नमस्कार भारत 19 अप्रैल दिन बुधवार, मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कार्यकारी आदेश जारी कर H-1B वीजा पर लगाम लगाने की मुहिम शुरू की।
Right now, widespread abuse in our immigration system is allowing American workers of all backgrounds.
अमेरिका में काम कर रहे भारतीयों पर होगा इसका कितना असर, कार्यक्रम में इस पर भी होगी चर्चा। अन्ना द्रमुक में एकता के लिए शशिकला और दिनाकरन पार्टी से किनारे किए गए, और क्या यूपी में बीजेपी की सरकार आने से मुसलमानों में डर का माहौल है?
इस वक्त जो है उनके सामने सवाल हिंदू राष्ट्र बनाने का है। ये हालात तो यही कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं।
सुनवाएंगे आपको ये खास रिपोर्ट, होगी अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन पहले सुनिए BBC समाचार।
BBC समाचार प्रभात पांडे से। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए एक आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ये अमरीकी कर्मचारियों के हितों के लिए है। प्रशासन का कहना है कि इससे उन अमरीकियों को फ़ायदा होगा जिनकी नौकरी विदेशी कर्मचारियों के हिस्से जा रही है। ये ट्रंप सरकार के अमरीकी सामान खरीदो, अमरीकियों को नौकरी दो नीति का हिस्सा है। डोनाल्ड ट्रंप पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान कहते रहे हैं कि जब भी वो सत्ता में आएंगे तो H-1B वीज़ा को ख़त्म कर देंगे। बड़ी संख्या में भारतीय इसी वीज़ा कार्यक्रम के तहत अमरीका नौकरी के लिए जाते हैं। अमेरिका में एक बुजुर्ग की हत्या करके उसका वीडियो फेसबुक पर डालने वाले व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक स्टीव स्टीफंस नाम के इस शख्स का पीछा करने के दौरान जब अधिकारी उसकी कार के करीब पहुंचे तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने खुद को गोली मार ली। स्टीफंस ने 74 साल के रॉबर्ट गुडविन की हत्या कर इस घटना का वीडियो फेसबुक पर डाला था, जिसके बाद पुलिस इसकी तलाशी कर रही थी। ये वीडियो फेसबुक पर 2 घंटे मौजूद रहा, उसके बाद इसे हटाया गया। फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग ने घटना पर कहा,
Our hearts go out to the family and friends of Robert Godwin Sr. and
मैं रॉबर्ट गुडविन के परिवार और उनके करीबियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करता हूं। हमें इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए काफ़ी काम करना है, ताकि ऐसे आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो फेसबुक पर डालने से और ऐसे अपराध करने से लोगों को रोका जा सके। फेसबुक के मुखिया मार्क ज़करबर्ग के शब्द। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने मध्यावधि चुनाव जल्दी कराने के अपने फैसले के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर एंगेला मेर्कल और दूसरे यूरोपीय नेताओं से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की जनता को इसके लिए शुभकामनाएं भी दी। टेरिजा मे ने घोषणा की है कि वो संसद से जल्द ही आम चुनाव कराने की सिफारिश करेंगी। इस घोषणा से पहले ब्रिटेन में कंजर्वेटिव सरकार की अवधि 2020 तक थी। अगर ब्रिटेन की संसद में इस बात को लेकर सहमति बन जाती है तो इसी साल जून में चुनाव हो सकते हैं। टेरिजा मे का कहना है कि ब्रेक्सिट की प्रक्रिया को प्रभावी रूप से पूरा करने के लिए चुनाव जल्दी कराना ज़रूरी है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने देश के लोगों से अपील की है कि वो सचेत रहें ताकि देश की आज़ादी की हिफाजत की जा सके। मुगाबे जिम्बाब्वे के 37वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोल रहे थे। 1980 में आज़ादी मिलने के बाद से ही वो जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हुए हैं। 93 साल के मुगाबे ने कहा कि हमने कड़े संघर्ष के बाद आज़ादी हासिल की है, आज हम उसका जश्न मना रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे अपील है कि होशियार रहें।
As we today celebrate our hard-won independence,
आप सभी लोग आंख और कान खोल कर रहें, क्योंकि हमारे दुश्मन हमारी किसी भी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। हम आज़ादी का जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन हमें होशियार रहना होगा। जिम्बाब्वे की जनता के नाम ये था राष्ट्रपति मुगाबे का पैगाम। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। फ्रांस में मार्से शहर से 2 इस्लामिक चरमपंथियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक इन दोनों के पास से कई किलो विस्फोटक पदार्थ भी मिले हैं और ये दोनों चरमपंथी फ्रांस में आतंकी हमले की योजना बना रहे थे। इनमें से एक चरमपंथी ने एक वीडियो भी बनाया जिसमें वो इस्लामिक स्टेट का काले रंग का झंडा लिए हुए है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में नए गवर्नर को चुनने के लिए वोटिंग चल रही है। BBC समाचार।
आज है तारीख 19 अप्रैल दिन बुधवार। नमस्कार भारत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है पंकज प्रियदर्शी। आप ये कार्यक्रम रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं लाइव। आज कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अमेरिका से, लेकिन खबर ऐसी है जो भारत को भी प्रभावित कर सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं जिसके तहत H-1B वीजा कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। H-1B वीजा के तहत अमेरिका में हाई स्किल्ड नौकरियों के लिए कंपनियां विदेशी लोगों को भेजती हैं। इस वीजा कार्यक्रम के तहत IT संबंधित नौकरियों के लिए बड़ी संख्या में भारतीय इंजीनियरों को सॉफ्टवेयर कंपनियां अमेरिका भेजती हैं। ट्रंप ने कहा,
राइट नाउ वाइडस्प्रेड अब्यूज इन आवर इमिग्रेशन सिस्टम इज अलाउइंग अमेरिकन वर्कर्स ऑफ ऑल बैकग्राउंड्स टू बी रिप्लेस्ड बाय वर्कर्स।
हमारे इमिग्रेशन सिस्टम में गड़बड़ी की वजह से हर तबके के अमरीकियों की नौकरियां विदेशी कामगारों के हिस्से जा रही हैं। कंपनियां कम वेतन देकर विदेशियों को नौकरी पर रख लेती हैं, जिससे अमरीकियों की नौकरियां मारी जा रही हैं। ये सब अब खत्म होगा। लंबे समय से अमरीकी कर्मचारी वीजा सिस्टम के दुरुपयोग को खत्म करने की मांग करते रहे हैं। आज उनकी मांगों पर पहली दफा अमल किया जा रहा है। ये थे ट्रंप के शब्द। और चलिए इस पर और जानकारी के लिए सीधे चलते हैं वॉशिंगटन अपने संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, ये बताइए कि क्या है ट्रंप के उस कार्यकारी आदेश में?
देखें पंकज, तीन चार मोटी मोटी बातें हैं। पहला, इसके तहत चार मंत्रालयों यानी गृह, विदेश, न्याय और श्रम, उन मंत्रालयों से कहा गया है कि वो H-1B नियमों का सख्ती से पालन करें और करने और इसमें सुधार लाने के उपाय सुझाएं। दूसरा, H-1B वीजा आवेदन के लिए जो मौजूदा लॉटरी सिस्टम है उसकी जगह मेरिट पर आधारित सिस्टम बहाल हो, जिससे कि वीजा सबसे मेधावी या उच्चतम डिग्री वाले उम्मीदवारों को मिले और उन्हें उच्च वेतन दिया जाए, जिससे वो अमरीकी उम्मीदवारों की जगह ना ले सकें। माना जा रहा है कि इसका सीधा असर भारतीय कंपनियों पर होगा। तीसरी बात यह भी कही जा रही है कि किसी भी नौकरी के लिए एक स्थानीय उम्मीदवारों के लिए जो इश्तेहार निकालते हैं उन्हें लंबे समय तक की डेडलाइन रखी जाए, जिससे कि ये साबित हो सके कि उस नौकरी के लिए अमेरिका में उम्मीदवार नहीं मिला इसलिए वो बाहर से लिया जा रहा है। और चौथी बात यह है कि अभी इसकी समय सीमा यानी ये कब तक लागू होगा इसका ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन आप कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी और आउटसोर्सिंग से जुड़ी कंपनियों को एक तरह से नोटिस पर डाल दिया गया है।
ब्रजेश, ये बताइए कि ट्रंप के आदेश पर प्रतिक्रिया क्या है? क्या इसकी आलोचना भी हो रही है?
देखिए, ट्रंप के आदेश की इस वक्त आलोचना भारतीय कंपनियों की तरफ से काफ़ी दबी जुबान से हो रही है। खासतौर से जो नैसकॉम है, जो भारतीय IT कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है, उन्होंने कहा है कि H-1B के नियमों में अगर कोई धांधली है तो उसमें सुधार लाना सही है, लेकिन ये कहना गलत है कि इसके इस्तेमाल सस्ते और कम हुनर वाले लोगों को नौकरी पर रखने के।
माफ़ कीजिएगा ब्रजेश उपाध्याय से हमारा संपर्क टूट गया। हम कार्यक्रम में उनके पास दोबारा चलने की कोशिश करेंगे। और अब चलते हैं ब्रिटेन, जहां कल ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने मध्यावधि चुनाव की मांग करके सबको चौंका दिया। अभी मौजूदा सरकार का कार्यकाल 3 साल और बचा है। टेरिजा मे का कहना है कि यूरोपीय संघ से अलग होने की बातचीत के लिए देश में स्थिरता आवश्यक है और चुनाव ही इसका एकमात्र रास्ता है। विपक्षी लेबर पार्टी के नेता जेरेमी कॉर्बिन ने कहा है कि वे चुनाव के लिए तैयार हैं, तो दूसरी ओर यूरोपीय संघ का कहना है कि टेरिजा मे की इस घोषणा से बातचीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में यूरोपियन स्टडीज की चेयरपर्सन भाष्वती सरकार से बात की और सबसे पहले पूछा कि वो टेरिजा मे के फैसले की क्या वजह देखती हैं।
बेसिक रीजन जो होगा उनका, अगर आप कुछ दिनों से देखें पॉलिटिक्स जो ब्रिटेन में हो रहा है, उसमें इंटरनल उनके जो पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स है वो थोड़ा बिखरा हुआ नजर आता है। इसलिए लग रहा है कि कुछ जो प्रॉब्लम है वो ब्रिटिश पॉलिटिक्स में लार्जर प्रॉब्लम जो है ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज, और ये सिर्फ ब्रिटेन में नहीं है, ये मुझे लग रहा है पूरे जो यूरोप में डिफरेंट कंट्रीज अगर देख रहे हैं वहाँ पे सारे पॉलिटिकल पार्टीज कुछ लेजिटिमेसी को लेके जूझ रहे हैं। इनकी जो अचानक मूव है वो सिर्फ अभी वाला मूव के नहीं है, ये इससे भी हम जोड़ के देख सकते हैं जो ब्रिटेन का जो रेफरेंडम हुआ था उस दौरान भी जो बहुत हलचल हुआ था, इट्स सिंपली एक पॉलिसी रेपरकर्शन वीजा वी यूरोप नहीं था, इंटरनल ज्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था, जैसे कि किसी को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है. हर पॉलिटिकल पार्टी उस वक्त पूरे बिखरे हुए नजर आ रहे थे, इंक्लूडिंग यूकिप जो इसको पुश कर रहे थे फॉर रेफरेंडम एंड मूविंग अवे फ्रॉम यूरोप. बट वहां पे भी आप देखिए वो लीडर तब निकल गए थे. तो जो ये पॉलिटिक्स में अभी वहां पे बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आता है, बहुत ज्यादा चर्निंग हो रहा है.
जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी है, जेरेमी कॉर्बिन का हमने बयान देखा, वो भी इसका स्वागत कर रहे हैं, तो क्या ये कहीं एक जोखिम तो नहीं हो जाएगा टेरेसा मे के लिए?
हो सकता है, मुझे फिर से यही लगता है कि हो सकता है. इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से उस वक्त कैमरून ने रेफरेंडम का भी ऐलान किए थे, बहुत अपने आप को शायद मजबूत महसूस कर रहे थे, बट पूरा पासा अलग ही कुछ हुआ. हो सकता है कि अभी जो जिस तरीके से उन्होंने आगे कर दिया है, उनको कहीं लग रहा है मजबूती होगा या कुछ जो क्रेडिबिलिटी है और लेजिटिमेसी है वो उभर के आएगा, एंड दैट विल हेल्प.
यूरोपियन काउंसिल ने तो साफ कह दिया है कि जो बातचीत चल रही है, जो शर्तें हैं वो वैसी ही रहेंगी और हम 8 जून के पहले ही शर्तें फाइनल कर लेंगे,
क्योंकि यूरोप को अपनी मजबूती भी तो दिखानी पड़ेगी ना. ये तो शुरू से ही रहा है कि वो ये ब्रेक्सिट का है, वो तो यूरोपियन यूनियन के एज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या जिस तरीके से वो सुप्रानेशनल एलिमेंट उसमें था और एक यूनिक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से था, उसके लिए एक बहुत ही बड़ा झटका, बहुत बड़ा धक्का तो है ही. आपको ये भी पता होगा कि अभी हाल फिलहाल में इतने सारे इलेक्शंस ऑलरेडी स्लेटेड है यूरोपियन स्टेट्स में. नेदरलैंड्स अभी गुजर के निकला है, फ्रांस स्लेटेड है, जर्मनी है. तो अगर देखे कि बहुत ही फ्लेक्सिबल होके या बहुत ही आराम से ये लोग इसमें से निकल सकते हैं, तो ये एक जरिया बनेगा कि ये तो निकलना बहुत आसान है. तो इस वक्त उनको एक रहने के लिए थोड़ा मजबूती इन नेगोशिएशंस तो दिखानी ही पड़ेगी, और मेरे ख्याल से वो यही करेंगे.
तो ब्रिटेन में मध्यावधि चुनाव की आहट. और एक बार फिर हमारा संपर्क वाशिंगटन स्थित हमारे संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय से हो चुका है. ब्रजेश, हम बात कर रहे थे आलोचना की, और साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूँगा सवाल कि भारतीय कंपनियों पे इसका क्या असर पड़ेगा, संक्षेप में बताइए ब्रजेश.
देखें, भारतीय जो आईटी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है नैसकॉम, उन्होंने कहा है कि H1B के नियमों में सुधार सही है, लेकिन ये कहना गलत है कि इसका इस्तेमाल सस्ते और कम हुनर वाले लोगों को नौकरी पर रखने के लिए दिया जा रहा है. मेरी एक छोटी कंपनी चलाने वाले भारतीय मूल के CEO से बात हुई, उनका कहना था कि वो जिस तरह का काम चाहते हैं और उसके लिए जितनी रकम खर्च कर सकते हैं, उस कीमत में उस हुनर के लोग यहाँ मिलते नहीं हैं, और अगर ज़्यादा कीमत देकर कम हुनर वाले लोगों को वो रखें तो उनके पास कंपनी करने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा. और यहां भारतीय कंपनियों की आलोचना इस बात के लिए हो रही है कि वो लॉटरी सिस्टम में इतने वीजा डाल देते हैं कि उसका वो एक तरह से दुरुपयोग करते हैं, खासतौर से टाटा कंसल्टेंसी या इंफोसिस या टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों की इस बात के लिए आलोचना हो रही है. और इसलिए कहा जा रहा है खासतौर से यहां पर के लोगों का कि ये ट्रंप का कदम जो है सो सही है.
बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश उपाध्याय आपका. तो ये थे ब्रजेश उपाध्याय वाशिंगटन से, जो बता रहे थे कि H1B वीजा पर लगाम लगाने की मुहिम शुरू की है डोनाल्ड ट्रंप ने.
75 वर्षों से आपके साथ
BBC हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी.
भारतीय कारोबारी विजय माल्या को कल लंदन में गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ वक्त बाद उन्हें जमानत भी मिल गई. माल्या पर भारतीय बैंकों का 9000 करोड़ रुपए का कर्ज न चुकाने का आरोप है. हमारे सहयोगी वात्सल्य राय ने इस मामले को लेकर भारतीय मूल के ब्रितानी नेता और अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई से बात की और पूछा कि क्या माल्या पर हो रही कार्रवाई भारत सरकार की कोशिशों का नतीजा है.
सबसे पहली बात तो यह है कि भारत सरकार ने बहुत ही प्रयत्न किए हैं, और ये जो आखिरी प्रयत्न हुआ है वो अरुण जेटली जी ने किया है. वो जब यहाँ से अगले महीने इंडो यूके कल्चरल ईयर के उद्घाटन में, तब उन्होंने ये सब किया, बोरिस जॉनसन से बात की और फिलिप हामन से बात की. अगर ब्रिटिश सरकार को गिरफ्तार करने को मंजूर हुई, मगर वो ब्रिटेन का कारण ऐसा है कि सरकार उन्हें एक्सट्राडाइट नहीं कर सकती, कोर्ट में जाना पड़ेगा, और कोर्ट जब तक जाकर है तब उनको एक्सट्रेडिशन यहाँ से नहीं कर.
लॉर्ड मेघनाथ देसाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, कोर्ट ये गए हैं, कितना आसान होगा भारत उनको लाना भारत सरकार के लिए?
अब तो कुछ 6-9 महीने लगेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ जो एक्सट्रेडिशन का कानून है वो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन पे आधारित है, और कोर्टों को ये निश्चय करना पड़ेगा कि अगर उनको एक्सटर्न किया जाए तो उनको फेयर ट्रायल मिलेगा या नहीं। हमारे यहाँ माने जाने टेररिस्ट को भी हम एक्सटर्न नहीं कर सकते अगर उनको वापस जाने से फेयर ट्रायल ना मिले। अच्छा, हिंदुस्तान की बात तो ऐसी है कि उनको फेयर ट्रायल मिलेगा, मगर कोर्टों को इस पर विश्वास होगा एक्सटर्नाइज करेंगे।
एक साल से विजय माल्या लंदन में है, इतना लंबा टाइम क्यों लगा ये अदालत तक मामला पहुंचने में?
हमारे यहाँ बात मैं जैसे कह रहा था, हमारे यहाँ एक्सट्रेडिशन का जो कानून है वो ह्यूमन राइट्स कन्वेंशन से आता है।
तो माल्या को भारत लाने में अभी और भी वक्त लग सकता है। और अब चर्चा तमिलनाडु की। तमिलनाडु में एक ताजा घटनाक्रम में शशिकला और टीटीवी दिनाकरन परिवार को अन्ना द्रमुक से अलग करने का फैसला किया गया है। वित्त मंत्री डी जयकुमार ने देर रात तक चली बैठक के बाद ये जानकारी दी। बेंगलोर से इमरान कुरैशी की रिपोर्ट।
कल सारा दिन ऐसा लग रहा था कि अन्ना डीएमके में दो गुटों के बीच खींचतान में ओ पन्नीरसेल्वम का गुट हार रहा है। वो इसलिए क्योंकि पन्नीरसेल्वम की मांग को मुख्यमंत्री एडप्पडी पलनीस्वामी के गुट में कोई मानने के लिए तैयार नहीं लग रहा था। लेकिन देर रात को 20 मंत्रियों के मीटिंग में ऐसा नहीं हुआ। जयकुमार ने पत्रकारों को कहा, सारे मंत्री और पार्टी काडर का ये निर्णय है कि कोई एक परिवार हमारे पार्टी को नियंत्रण नहीं करेगा और इसमें टीटीवी दिनकरन का परिवार भी शामिल है। हमारे पास 122 विधायक का समर्थन है। ये थे डीजे कुमार के शब्द। जिस तरह यह निर्णय लिया गया उसने हर किसी को हैरान कर दिया। राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि निर्णय किसी के बोलने पर लिया गया, लेकिन इसके बावजूद हर एक को पता है कि दिनकरन को 20 से 25 विधायकों का समर्थन है। इन समर्थकों की सोच किस तरह बदलेगी वो शायद आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। इमरान कुरैशी, बीबीसी।
तो तमिलनाडु में राजनीतिक उठापटक का दौर अब भी जारी है। और अब समय है विशेष रिपोर्ट का। हाल ही में यूपी में भाजपा को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। योगी आदित्यनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। क्या यूपी के मुसलमानों में डर और अनिश्चितता का माहौल है? कहीं उन्हें ये तो नहीं लग रहा कि उनका हाल गुजरात के मुसलमानों जैसा न हो जाए, जहां आरोप है कि बीजेपी ने मुस्लिम समुदाय को अलग थलग कर रखा है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद हाल ही में यूपी और गुजरात के मुसलमानों से मिलकर रोटे हैं। सुनिए उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
आजकल धावा बोल रहे हैं जिससे कि इस्लामी और जो मसाइल हैं इनको ऊपर ये अपने एक अंडर में ले रहे हैं, जबकि इनसे कोई वास्ता नहीं है इनका।
जो जातियां मुस्लिम के साथ हो रही हैं तो बिल्कुल मैं नहीं सोचता हूं कि बिल्कुल भी कोई भी नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाए।
जब से सत्ता में आए हैं बिल्कुल मामला रद्दबदल हो गया और मुसलमान जो है बहुत अपने आप को जो है अकेला महसूस कर रहा है।
ये है वो आवाज़ें जो कुछ सप्ताह पहले तक आत्मविश्वास से भरी होती थी, अब इनमें घबराहट है, खौफ है। बीजेपी सरकार को ये शक की निगाह से देखते हैं। इनके नेता सत्ता में मुस्लिम भागीदारी घटने से परेशान हैं। बीजेपी की ज़बरदस्त कामयाबी से मुसलमानों को एक बड़ा सियासी झटका लगा है और इसे वो उतनी ही बड़ी घटना मानते हैं जितनी कि बाबरी मस्जिद के 1992 में गिराए जाने को मानते थे। शिव बहादुर सक्सेना बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता हैं। विधानसभा चुनाव में वो आजम खान से हारकर दूसरे स्थान पर रहे, रामपुर से दो बार मंत्री रह चुके हैं।
यहाँ अल्पसंख्यक है हिंदू, यहाँ हिंदू की पोजीशन ये है, आप जाके शहर में देखेंगे 20 घर हिंदुओं के हैं और चारों तरफ 200 घर मुसलमानों के हैं। वो हिंदू मुसलमानों जैसे त्यौहार करते हैं। ये अब वो नहीं, अब वो उन हिंदुओं में लगा कि हमारी सरकार आ गई है, अब वो भी हिंदू सीधे बनकर बैठ गए। इसलिए ये है भय इनको कि अब ये हमारे जिन पे हम हुकूमत चलाया करते थे हिंदू, अब वो हमारे सामने खड़े हो गए।
भारत के सबसे घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 20% है, यानी राज्य में 4 करोड़ मुस्लिम बसते हैं। पिछले चुनाव में 65 मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आए थे। इस विधानसभा में इनकी संख्या घटकर 23 हो गई, जिनमें से अधिकतर समाजवादी पार्टी के हैं। मुसलमानों के बेचैन होने की वजह ये भी थी कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिए बिना और उनके वोट लिए बिना इतनी भारी जीत हासिल कर ली थी। लोग गुजरात के मुसलमानों का उदाहरण देने लगे। यूपी में हुई घटनाओं को वो गुजरात मॉडल कह रहे थे। संभल के बुजुर्ग मुस्लिम नेता शफीकुर रहमान बर्ख समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और 4 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं। वो हाल में ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो गए। वो कहते हैं,
हाँ, इस वक्त जो है उनके सामने सवाल हिंदू राष्ट्र बनाने का है। ये हालात तो यही कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं इसको।
गुजरात में बीजेपी पिछले 25 सालों से सत्ता में है, मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती है और मुस्लिम वोट भी नहीं मांगती है, तब भी हर चुनाव पार्टी जीतती आ रही है। यूपी के मुसलमानों को डर है कि 25 साल बाद उनका भी वही हश्र होगा जो गुजरात के मुसलमानों के साथ हुआ है। गुजरात के मुसलमानों का 2002 की हिंसा में बुरा हाल हुआ था। समुदाय के 1000 से अधिक लोग मारे गए थे, कई घर जला दिए गए थे, दुकानों को लूट लिया गया था और सैकड़ों बेघर हो गए थे। कई आज भी कैंपों में रह रहे हैं। मारे जाने वाले लोगों के रिश्तेदार इंसाफ की लड़ाई लड़कर थक चुके हैं, लेकिन गुजरात का आम मुसलमान खुददार साबित हुआ। उसने अपनी जिंदगी दोबारा जीने की कोशिश शुरू कर दी है।
हमें मुस्लिम छे परंतु हमने भारतीय होवा पर गर्व छे।
वी आर मुस्लिम, वी आर प्राउड ऑफ इंडिया।
हूँ मुस्लिम छू अने मने भारतीय होवा पर गर्व छे।
अहमदाबाद का शमा स्कूल, यहाँ मुस्लिम लड़कियाँ गुजरात राज्य के सरकारी पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और बहुत खुश नजर आती हैं। ये लड़कियाँ गुजराती मुस्लिम समुदाय का नया चेहरा हैं। इनका यूनिफॉर्म इस्लामी, भाषा गुजराती और दिल हिंदुस्तानी है। ये 2002 की हिंसा के बाद पैदा हुई पीढ़ी है। मुस्लिम समाज में शिक्षा को प्राथमिकता देने वाला बदलाव का ख्याल दंगों के कुछ सालों के बाद आया, जैसा कि दंगा पीड़ित लोगों के बीच काम करने वाले हनीफ लकड़ावाला बताते हैं।
एजुकेशन वाइज जो है वो मुसलमान काफ़ी पिछड़ा हुआ था और 2000 के बाद तो वो कुछ सालों तक तो ये है कि और स्कूलों में वो बच्चों को भेजने को तैयार भी नहीं थे, पर उसके सामने मुसलमानों ने अपने बहुत सारे एजुकेशनल ट्रस्ट खड़े करने शुरू कर दिए। जैसे 2002 से पहले सिर्फ 200 एजुकेशनल ट्रस्ट थे जो मुस्लिम्स के जो स्कूलें चलाते थे। अब ये है कि 800 से ज़्यादा मुस्लिम एजुकेशनल ट्रस्ट है जो स्कूलें चला रहे हैं।
शमा स्कूल गुजरात सार्वजनिक वेलफेयर ट्रस्ट के शिक्षा केंद्रों का एक हिस्सा है, जहाँ 4500 मुस्लिम लड़के और लड़कियाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ये सारे स्कूल 2002 के बाद खुले हैं। गुजरात में मुस्लिम समाज राज्य की 6 करोड़ आबादी का 9.5% है, लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी ने पिछले 25 सालों में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया है और न कोई मंत्री बनाया है। विधानसभा में 182 सीटें हैं, जिनमें से केवल 2 पर पिछले इलेक्शन में मुस्लिम उम्मीदवार चुनकर आए और वो दोनों कांग्रेस पार्टी से संबंध रखते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि गुजरात के मुसलमानों की सियासी अलहदगी भी अब खत्म होने के कगार पे है। ये हैं वडोदरा के पास दिवालीपुरा गांव की नई सरपंच नीलोफर पटेल, जिन्हें सरपंच बनाया है गांव के हिंदुओं ने। शायद नीलोफर जैसे युवा राज्य के मुस्लिम समुदाय की आवाज बन सकते हैं, सियासत में उनका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं या फिर हिंदू मुस्लिम समाज को जोड़ने में एक कड़ी साबित हो सकते हैं। नीलोफर अंग्रेजी बोलती हैं, आधुनिक विचार रखती हैं और हिंदू मुस्लिम में कोई तमीज़ नहीं करती। तो गुजराती मुसलमानों की सियासत में वापसी में कुछ समय लग सकता है, मगर फिलहाल यूपी वालों को इतना बताना ज़रूरी है कि गुजरात का मुसलमान अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है। उसका कहना है कि उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं, उसका कद भी ऊंचा हुआ है और वो अपने धर्म और अपने रीति रिवाज पर अब भी कायम है। शमा स्कूल की दीवार इस प्राचीन मस्जिद की दीवार से सटी है। इस्लामी यूनिफॉर्म पहने बड़े बच्चे नमाज अदा करने जा रहे हैं, छोटे बच्चे रिक्शा से अपने घरों को लौट रहे हैं। उनके साथ उनके परिवार वाले आए हैं, कोई दाढ़ी रखे हुए हैं, कोई बुरका पहने। इस मंजर को देखकर किसी इस्लामी समाज की कल्पना होती है, किसी हिंदू राष्ट्र की नहीं। जुबैर अहमद, BBC गुजरात।
जुबैर अहमद की ये विशेष रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। और अब समय है अखबारों की समीक्षा का, प्रभात पांडे के साथ। जी पांडे जी।
जी, तमाम अखबारों में विजय माल्या से संबंधित खबरें छपी हैं। उसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने पहले पन्ने पर अफगान मीडिया रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि इस्लामिक स्टेट के ठिकाने पर जो अमेरिका ने सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया था, उनमें जिन 96 IS लड़ाकों की मौत हुई थी उनमें से 13 भारतीय हैं। अफगानिस्तान की समाचार एजेंसियों का हवाला देते हुए अखबार ने खबर छापी कि ये 13 भारतीय इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए भारत से भाग कर गए थे।
ये हिंदुस्तान अखबार ने दावा,
हिंदुस्तान टाइम्स ने ऐसा दावा किया है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, द टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रोचक खबर छपी है कि पूर्वी दिल्ली के हसनपुर इलाके में दिल्ली मेट्रो की लाइन निकालने के लिए एक प्लॉट की जरूरत थी, तो दिल्ली मेट्रो ने उस प्लॉट के 2 मालिकों को तकरीबन 6 करोड़ रुपए दिया ताकि ये प्लॉट हासिल किया।
बड़ी रकम है ये।
जी, मैं ये खबर पढ़कर सोच रहा था कि काश मेरा भी कोई प्लॉट मेट्रो लाइन में आ जाए तो
अच्छा रहेगा।
जी, इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया में ही एक रोचक सी हेडलाइन छपी है,
बीजेपी, मैंने भी देखा था, लवली गिफ्ट टू बीजेपी,
बीजेपी गेट्स अ लवली गिफ्ट फॉर सिविक पोल्स। इसके अनुसार दिल्ली के जो पूर्व कांग्रेस प्रमुख हैं अरविंदर सिंह लवली, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं दिल्ली में जो MCDA चुनाव होने वाले हैं उसके ठीक पहले। इसके अलावा द पायोनियर अखबार में एक खबर छपी है, इसके मुताबिक न्यूयॉर्क में एक भारतीय सिख टैक्सी ड्राइवर पर 4 यात्रियों ने हमला किया और पुलिस इसे हेट क्राइम मान रही है। अखबार के अनुसार हमले के दौरान इन चारों ने हरकीरत सिंह नाम के सिख टैक्सी ड्राइवर की पगड़ी भी उतार ली, इससे न्यूयॉर्क के सिख समुदाय में काफ़ी गुस्सा है। द पायोनियर अखबार समेत कई अखबारों में ये भी खबर छपी है कि सरकारी मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल जून से सितंबर महीने के दौरान देश भर में सामान्य मॉनसून रहेगा। ये इसे किसानों के लिए अच्छी खबर माना जा रहा है,
किसानों के भी अच्छे दिन आ सकते हैं।
जी जी, क्योंकि इससे पहले कुछ मौसम का पूर्वानुमान लगाने वाली कुछ निजी संस्थाओं ने आशंका व्यक्त की थी कि मॉनसून सामान्य से कम रह सकता है। जी पंकज,
बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात आपका। और अब समय है खेल की खबरों का।
खेल की दुनिया की खबरों के साथ मैं हूं सुमिरनप्रीत कौर। पहली बात क्रिकेट की। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पॉन्टिंग 1 से 18 जून तक होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कमेंट्री की सूची में शामिल हैं, जिसकी घोषणा मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने की है। अब बात टेनिस की। मोंटे कार्लो मास्टर्स में वर्ल्ड नंबर 2 नोवाक जोकोविच ने ओपनिंग राउंड में फ्रांस के गाइल सिमोन को 6-3, 3-6, 7-5 से हराया। अब बात फुटबॉल की। UEFA चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल्स में आज मुकाबला है बार्सिलोना और जुवेंटस के बीच, वहीं दूसरी तरफ मुकाबला होगा मोनाको और बोरुशिया डॉर्टमंड के बीच। स्पोर्ट्स की दुनिया से फिलहाल इतना ही।
और अब चर्चा IPL की। कल राजकोट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और गुजरात लायंस के बीच हुए एक हाई स्कोरिंग मैच में आखिरकार जीत हासिल की बेंगलोर की टीम ने। क्रिस गेल और विराट कोहली की तूफानी बल्लेबाजी की बदौलत राजस्थान ने 213 रनों का विशाल स्कोर बनाया। गेल ने 77, कोहली ने 64 रन बनाए। इसी मैच के दौरान क्रिस गेल ने T20 में 10,000 रन पूरे किए और ऐसा करने वाले वे पहले बल्लेबाज बने। और आज IPL में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला होगा दिल्ली डेयर डेविल्स की टीम से और वेन्यू होगा हैदराबाद। और अब हम पहुंच चुके हैं कार्यक्रम के अंत में। मुख्य समाचार।
BBC समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीज़ा के कथित दुरुपयोग को रोकने के लिए एक आदेश पर दस्तखत कर दिए हैं। ट्रंप ने दावा किया कि ये अमरीकी कर्मचारियों के हितों के लिए है। अमरीका में एक बुजुर्ग की हत्या करके उस घटना का वीडियो फेसबुक पर डालने वाले व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली है। पुलिस के मुताबिक स्टीव स्टीफंस नाम के इस शख्स का पीछा करने के दौरान जब अधिकारी उसकी कार के करीब पहुंचे तो गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने खुद को गोली मार ली। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरिजा मे ने मध्यावधि चुनाव जल्दी कराने के अपने फैसले के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर एंगेला मेर्कल और दूसरे यूरोपीय नेताओं से बात की। टेरिजा मे ने घोषणा की है कि वो संसद से जल्द ही आम चुनाव कराने की सिफारिश करेंगी। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति रॉबर्ट मुगाबे ने देश के लोगों से अपील की है कि वो सचेत रहें ताकि देश की आज़ादी की हिफाजत की जा सके। मुगाबे जिम्बाब्वे के 37वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बोल रहे थे। BBC समाचार।
इसके साथ ही नमस्कार भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान, पंकज प्रियदर्शी और प्रभात पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।